ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله پچھلے درس میں غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ اس موضوع پر کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھی تھی. آج اسی موضوع کا بچا ہوا حصہ اور کچھ اور اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتے ہیں ان اصولوں میں ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے. ہر انسان سے زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں, کبھی وہ غلطی دنیوی ہوتی ہے کبھی دینی, کبھی غلطی چھوٹی ہوتی ہے کبھی غلطی بڑی ہوتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کبھی علم نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والا سماج میں عزت دار انسان ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. کبھی کوئی عام آدمی ہوتا ہے, کبھی ہم سے چھوٹا ہوتا ہے, ہمارا ماتحت ہوتا ہے. اگرچہ یہ ایک ہی عمل دکھائی دیتا ہے کہ غلطی کی اصلاح کی جائے, غلطی پر ٹوکا جائے, لیکن ماحول کے بدلنے سے, اشخاص کے بدلنے سے اور حالت کے بدلنے سے اس کی اصلاح کے طریقے اور اس کے سلسلے میں تمام تفاصیل کا معاملہ بدل جاتا ہے. کون سی چیز کس طرح سے کرنا ہے, اگر یہ آدمی کو نہ معلوم ہو کہ کس کی غلطی کی اصلاح کس طریقے سے کرنی چاہیے, اگر اس کا انسان کو علم نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ وہ اصلاح کرنے کی نیت سے کوشش تو کرے لیکن بجائے اصلاح ہونے کے مزید فساد بڑھ جائے, بگاڑ بڑھ جائے, سماج میں اور زیادہ خرابی پیدا ہو جائے. ویسے ہی جیسے کسی انسان کے پاؤں میں کوئی کیل, کانٹا یا شیشے کا کانچ کا ٹکڑا پھنس گیا ہے, گھس گیا ہے, اب اگر اس کو نکالنے کا طریقہ صحیح ڈھنگ سے معلوم نہیں ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے غلط انداز کی وجہ سے زخم کو اور بڑھا دے, نقصان زیادہ ہو جائے. تو جس کو آپریشن کرنا آتا نہیں ہے, اگر اس کے ہاتھ میں آپ سارے اچھے سے اچھے اوزار بھی دے دیں, ہتھیار دے دیں, سارے اپریٹس اس کے دے دیں اور بڑے سے بڑا اسپتال ہو, لیکن اس کو آپریشن کرنا آتا نہیں ہے, تو آپ مریض کے جنازے کا انتظام پہلے سے ہی شروع کر سکتے ہیں, کیونکہ نتیجہ برا ہوگا. عمل اگرچہ اچھا ہے لیکن ہر عمل کے قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے حضرات اصلاح کرنے کی فضیلت کو سنتے ہیں, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اصلاح ہو، برائیاں دور ہوں، لیکن جیسے تیرنے کا ایک طریقہ ہے، صرف پانی میں کودنا کافی نہیں ہے، اس کو تیرنا آنا چاہیے. کوئی آدمی ڈوب رہا ہے پانی میں، اب اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی کہ بیچارہ ڈوب رہا ہے، کچھ کرنا چاہیے. اب جوش میں آ کے ہمدردی کے جذبے کے تحت ایمان کی قوت کے ساتھ کود گیا پانی میں. پانی میں کودنے کے بعد یاد آیا مجھ کو تو تیرنا آتا نہیں ہے. اب بتائیے، اب چلانے والے کتنے ہو جائیں گے؟ ایک نہیں دو ہو جائیں گے. تو ایک اصول آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صرف اس کام کے کرنے کا جذبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس جذبے کے ساتھ ساتھ اس کام کے کرنے کا سلیقہ بھی آدمی کے پاس ہونا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیں. ہمارے بہت سارے بھائی دعوت، اصلاح، تبلیغ، تنقید، مناظرہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے سلسلے میں ان کے دل میں جذبات امڑ آتے ہیں. دین کی مدافعت، دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، اس کے جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن بعد میں ہوتا یہ ہے کہ عمل صحیح طرح سے کرنے کی بجائے آدمی اس میں غلطی کرتا ہے، نقصان کر دیتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی، جب کوئی معاملہ ایسا پیش آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی اصلاح کا کیا تھا؟ پچھلے دروس میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں، آج اسی سے آگے ہم اس موضوع سے یعنی آگے بڑھتے ہوئے اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس آدمی نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا، تو آپ نے صحابہ کو روکا اس کو گھسیٹنے سے، اس کو روکنے سے. وجہ اس کی یہی تھی کہ اگر اس کو اسی حال میں کھینچا جاتا، روکنے کی کوشش کی جاتی، تو مسجد میں گندگی اور بڑھ سکتی تھی. تو جب ایک گندگی ایک کونے میں ہو رہی ہے، اگر اس کو چھیڑنے سے وہی گندگی پوری مسجد میں ہو سکتی ہے، پھیل سکتی ہے، تو پھر اس کو وہیں فارغ ہونے دیں، بعد میں سمجھائیں، صحیح موقع اور مناسب وقت دیکھ کر اس کو سمجھایا جائے. یہ صرف مسجد اور پیشاب کا معاملہ نہیں ہے، یہ سماج اور گناہوں کا معاملہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو چھیڑ دینے سے وہ آدمی اکیلا بیٹھ کے گناہ کر رہا ہے کسی کونے میں چھپ چھپا کے، اگر آپ اس کو چھیڑ دیتے ہیں، غلط وقت پر آپ اس کو غلط طریقے سے سمجھاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں غلط کام کر رہا تھا وہ پورے معاشرے میں کھل کے کام کر رہا ہے اور ڈٹ کے کام کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے، اگر ایسا امکان ہے تو انتظار کرنا چاہیے کہ صحیح وقت پر اس کو بتایا جائے. یہ اصول ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ کسی آدمی نے کچھ بات کہی ہے یا کوئی کام کیا ہے اور اس کے کلام کا ایک حصہ غلط ہے اور ایک حصہ صحیح ہے، اس کے عمل میں سے کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پورے ہی عمل کو، پوری ہی بات کو ہم غلط ثابت کر دیں، سر سے پاؤں تک اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں. ایک آدمی کبھی ایسا کرتا ہے کہ کچھ صحیح کچھ غلط، کبھی وہ کچھ ایسی بات بولتا ہے جس میں کچھ حصہ صحیح ہوتا ہے کچھ غلط ہوتا ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب اس کی اصلاح کریں تو اس کی صحیح بات کو صحیح کہیں اور غلط بات کو غلط. ایسا نہ ہو کہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کے صحیح کو بھی ہم غلط کہنا شروع کرتے ہیں. اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بجائے اپنی غلطی کے اعتراف کے، غلطی ماننے کی بجائے، اس کے اندر بغاوت اور ضد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں صاحب نے مجھ کو ڈانٹا، ایسا کہا، اور میری صحیح بات کو بھی غلط کر دیا، ان کی بات میں نہیں مانوں گا. اس لیے کسی کی اگر کوئی صحیح بات ہے تو ضد میں آ کر، غصے میں آ کر اس کی غلط کی وجہ سے اس کے صحیح کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے. بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے افراد ہیں، اب بیانات میں بعض اوقات بہت ساری باطل باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں، بہت ساری ان کی کوششیں ہوتی ہیں جن میں غلط بھی ہوتا ہے. اب کوئی آدمی ہم سے پوچھے کہ ان کا یہ کیسا ہے، अब हम कहे पूरा का पूरा गलत है, वो आदमी नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं, इनकी ये बात तो सही है, ये बात गलत हो सकती है लेकिन ये बात सही है, तो वो दिफाई पोजीशन में चला जाता है। लेकिन अगर आप यूं कहें कि ठीक है ये बात तो सही है लेकिन ये बात गलत है, तो वाकई वो आदमी भी महसूस करता है कि इन्होंने इंसाफ के साथ आदल के साथ बात की है, उन्होंने सही को सही कहा गलत को गलत कहा, तो वो भी मानने लग जाता है। लेकिन अगर आप यूं कहें कि नहीं उनका तो सर से पांव तक सब गलत है, शुरू से आखिर तक सब गलत है, तो कोई भी आदमी सोचता है ऐसा कोई भी जमीन पे नहीं होता, उसका कुछ भी सही नहीं हो, और ये लोग जिद्दी लोग हैं, ये लोग सही को भी गलत कहते हैं। तो इसलिए ये उसूल जिंदगी में याद रखें, ये नहीं कि आप कहें कि फुलां साहब बहुत अच्छे हैं, फुलां साहब बहुत अच्छे, अपनी तरफ से किसी बिदाती की तारीफ करना, उसकी ताजीम करना, उसको अपनी जबान से ऐसे अंदाज में उसका जिक्र करना कि लोगों के दिल में उसकी कदर मंजिलत पैदा हो जाए, ये भी गलत है। जबरदस्ती आप खुशामद किसी की ना करें, लेकिन कभी ऐसा मौका आ जाए कि आपके सामने किसी की कोई बात आए और आपको उस पर फैसला देना, तो आप सही को सही कहें और गलत को गलत, दोनों में फर्क याद रखें, वरना आप शुरू हो जाएं कि सब लोग ये कितने अच्छे लोग हैं, हाँ ये गलत है, ये कितने अच्छे लोग हैं, ये कितना अच्छा आलिम साहब है, अगरचे शिर्क करता है कुफर करता है लेकिन कितने अच्छे अखलाक वाला है, तो आप अपनी तरफ से किसी की तारीफ शुरू न करते हैं। लेकिन अगर फैसले का मौका आए, जजमेंट का मौका आपको आए और कोई आपसे पूछे, तो आप इंसाफ के साथ अदल के साथ बताएं और फिर मजमुई फतवा जो उसके ऊपर होता है, इन वजूहात की बिना पर अगरचा कुछ चीजें अच्छी हैं लेकिन फाइनल आउटपुट गलत है, इसलिए ये गलत है, ये और बात है, ये भी याद रखें। आप देखें रुबैय बिन्त मुअविद रदी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं, दखल अलैय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदाता बुनी अलैय, मेरे निकाह के दिन सुबह सवेरे यानी अगले दिन मेरे पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाए, फजलसा अला फिराशी का मजलिसी का मिन्नी, उन्होंने रावी से कहा कि जैसे तुम बैठे हुए उस वक्त में वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर यहां पर बैठे, इस बिस्तर पर बैठे, इस फिराश पर, इस बिछौने पर बैठे, वजुवैरियातुन यज़रिबन बिद्दुफ, कुछ बच्चियां थीं जो दफ पर दफ बजाकर कुछ गीत गा रही थी, कुछ अशआर कह रही थी, यंदुबन मिन मन कुतिला मिन आबाइहिन यौम बद्र, और वो अपने शार में बद्र के दिन उनके बद्र की जंग में जो मुसलमान शहीद हुए थे उनकी तारीफ में कुछ अशआर कह रही थी, हत्ता कालत जारिया, यहां तक कि एक जारिया ने, एक बच्ची ने यूं कहा, ओफीना नबीयुन यालमु मा फी गदिन, और हमारे दरमियान एक ऐसा नबी मौजूद है जो कल क्या होगा जानता है, यालमु मा फी गदिन, गद का, कल का इल्म रखता है, गैब का इल्म रखता है। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकूली हाकदा, ऐसा मत कह, वकूली मा कुंती तकूलीन, हाँ जो पहले कहती रही थी, जो अशार तूने पहले कहे थे वो कहती रहे, ये मत कह। और एक रिवायत में, ये बुखारी की रिवायत थी, तिर्मिजी के अल्फाज हैं, आपने कहा उस कुथी अनहादीही, ये जो तू कह रही थी चुप हो जा, ये मत कह, वकूल लदी कुंती तकूली न कबलहा, हां इससे पहले जो कह रही थी वो कहती रहे। इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अम्मा हादा फला तकूलू, ये जो अल्फाज हैं कि हमारे दरमियान एक नबी है जो गद का, कल का इल्म रखता है, ये मत कहो, क्यों, मा यालमु फी गदिन इल्लल्लाह, कल क्या होगा, कल में क्या है, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। तो ये रिवायत हमको बताती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची के अशआर में दो किस्म के अशआर पाए, एक तो वो जिसकी शरीयत में गुंजाइश है, दो जिसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ये नहीं कहा बंद करो ये सब, लपेटो तुम्हारा, चले जाओ यहां से, ऐसा नहीं कहा, बल्कि आपने क्या किया, आपने जितना हिस्सा जायज था आपने उसकी तायीद की, और जो जायज नहीं था आपने कहा ये मत कहो। तो कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान कोई काम करता है जिसका कोई हिस्सा सही होता है कोई हिस्सा गलत होता है, आप आउटराइट पूरे को रिजेक्ट कर दें, उसको डिस्करेज कर दें, उसका हौसला तोड़ दें, तो वो अमल से ही रुक जाता है। एक आदमी मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ रहा है, कभी आता नहीं था नमाज के लिए, अब नमाज में एक आध गलती कर दी उसने, बाकी नमाज सही पढ़ी, आपने डांट दिया उसको, नमाज पढ़ने आती नहीं, चले आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, पहले सीखने नहीं आता, अब वो डिस्करेज होगा अगली मर्तबा से, या तो नमाज ही नहीं पढ़ेगा या तो दूसरी मस्जिद में चला जाएगा। आपने उसको लिया बिठाया, उसको कहा कि बहुत अच्छा तुम आए नमाज के लिए, देखो अल्लाह ताला तुमको कबूल फरमाए, तुमने बहुत अच्छी नमाज पढ़ी, लेकिन एक चीज ऐसी है कि उसमें इस्लाह की जरूरत है, अगर ये हो जाए तो तुम्हारी नमाज तो बहुत उम्दा हो जाएगी, और देखो ऐसी ऐसी गलती तुमने की है। अब क्या किया आपने, उसको एनकरेज किया, उसकी हौसला अफजाई की, उसकी सही बात को आपने और उसकी हिम्मत बढ़ाई, और एक गलती थी आपने उस गलती की इस्लाह भी कर दी, तो वो आदमी आपकी गलती बताने की तरफ ध्यान नहीं देगा, आपके हौसला अफजाई की तरफ देखेगा और साथ ही अपनी इस्लाह भी कर लेगा। तो ये तरीका है इस्लाम में कि एक इंसान बाज़ औकात किसी की गलती देखकर उसके पूरे मामले को गलत कहना शुरू कर देता है। इससे बहुत सारे लोग अवलन तो मानते नहीं है, दूसरे ये कि उनके दिलों में हमारे लिए नफरत भी पैदा हो जाती है। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जो तू कह रही थी वो मत कह, हाँ जो पहले कहती थी वो कहती रहे। कोई बच्चा है, कोई घर में कोई चीज करता है, अब आधी चीज सही की कुछ उसमें गलती भी की, अब आप उसको एकदम डांट दें वो समझ नहीं पाएगा, आपका काम है आप उसको बिठाएं, आप बताएं देख तूने ये जो कहा ये सही है, तूने ये जो कहा वो गलत है, तूने ये काम किया वो सही है, ये काम किया वो गलत है। बच्चों की इस्लाह में हम लोग आमतौर से क्या करते हैं, गलती पे जो धुलाई उनकी करते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता ये तोहफा किस चीज की वजह से मिल रहा है, उनको मालूम ही नहीं, उनको मालूम नहीं होता कि क्यों क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये, उनको आपको बताना चाहिए देख तूने ये जो किया ये गलत है, हाँ इतना किया था वो गलत नहीं था लेकिन यहां जो किया तूने गलत था। मसलन घर में खेल रहा है, खेलते खेलते आके मेहमान की दाढ़ी खींचने लग गया, अब आपका काम है आप उसको क्या करें, अरे तुम खेल लेते ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ जाओ वहां उस कमरे में खेलो। तो आप जो है यानी गलती को बताएं, और सही चीज है खेलना गलत नहीं है, आप उसको दूसरे कमरे में भेज दिए। तो ऐसी कई चीजें कई मिसालें जिंदगी में आती हैं, आदमी इसमें फर्क नहीं कर पाता है और ऐसे तरीके से इस्लाह करता है जिससे फायदे के बजाय नुकसान होता है। इसी तरह से एक बात यह भी है कि अगर किसी इंसान की गलती अनजाने में उसको मालूम ही नहीं और उसने गलती की, तो ऐसे आदमी को डांट डपट की बजाय समझाने की जरूरत होती है। एक आदमी जिसको सब कुछ मालूम है और वो गलती कर रहा है, और दूसरा आदमी वो है कि जिसकी गलती की वजह लाइल्मी है न जानना है, अब आप उसको बताने की बजाय डांटोगे तो ऐसे आदमी की इस्लाह की बजाय उसके दिल में या तो आपकी नफरत पैदा होगी या वो अमल ही छोड़ देगा। इसलिए ऐसे आदमी को प्यार मोहब्बत से शफकत से समझाना चाहिए, फिर उसके बाद वापस वो गलती दोहराए, तब अगर कोई आदमी उसको डांटता है तो एक और बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी मुआविया इब्न हकम अस्सुलमी, ये नए नए मुसलमान हुए थे, कहते हैं बैना अना उसल्ली मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहा था जमात में, इद अतासा रजुलुन मिनल कौम, कौम का एक आदमी छींका, फकुल्तु यरहमुकल्लाह, नमाज में छींका एक आदमी तो इन्होंने क्या कहा यरहमुकल्लाह अल्लाह तुझ पे रहम करे, फरमानिल कौम बिअबसारिहिम, लोग मुझको घूर के देखने लगे, फकुल्तु वा सुक्ला उम्मिया मा शअनुकुम तंजुरून इलै, उन्होंने कहा ओ मुझको मेरी मां गुम कर दे, अरबी में कहा जाता है इस तरह से, तुम क्यों मुझको घूरते हो, क्या हुआ? फजालु यदरिबून बिअयदीहिम अला अफ़क़ादिहिम, उन्होंने इस पर अपनी रान पर इस तरह से मारना शुरू किया ताकि इनको एहसास हो कि हम जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन इशारा कर रहे हैं तो बात नहीं करना है। फलम रायतुहुम युसम्मितूननी लकिन्नी सकतु, वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि वो मुझको चुप करना चाह रहे हैं तो मैं चुप हो गया। फलम सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबी अबी हुआ व उम्मी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूं, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूं। मा रायतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बादहु अहसन तालीमन मिन्हु, मैंने आपसे पहले या आपके बाद आपसे अच्छा तालीम देने वाला नहीं देखा, मैंने ऐसा कोई आदमी मिला ही नहीं मुझको जिसने इतने अच्छे अंदाज से तालीम दी हो, ना आपके पहले ना आपके बाद। फवल्लाही अल्लाह की कसम, मा कहरनी वला दरबनी वला शतमनी, अल्लाह की कसम न आपने मुझको डांटा न आपने मुझको पीटा न आपने मुझको बुरा कहा, आपने डांटा भी घूर के भी नहीं देखा मुझको, कहरा नहीं, और न आपने मुझको मेरी पिटाई की न आपने मुझको बुरा भला कहा। काला इन हाजी सलात ला यसलुहु फीहा शैउम मिन कलामिन नास, आपने कहा देखो ये जो नमाज है इस नमाज में दुनिया की बातें करना, लोग जो आम तौर से बातें करते हैं ऐसा नहीं किया जाता है, इसमें लोगों की बातें नहीं चलती हैं। इन्नामा हुआ तस्बीह व तकबीर व किरातुल कुरान, नमाज में जो कुछ कहना है वो क्या है, तस्बीह है, तकबीर है और कुरान की किरात है, नमाज में यही चलता है, बातचीत नहीं चलती है। औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबी कहते हैं आप कुछ इसी तरह से आपने और भी बातें की, इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस से दो बातें मालूम होती हैं, एक ये कि सहाबी ने नमाज में गुफ्तगू कर दी तो उनको मालूम नहीं था कि नमाज में बात नहीं करते हैं, और अगर चाहे वो दुआया कलिमात थे लेकिन वो किसी के अमल का जवाब था तो गोया कि वो कलाम है, उससे खिताब है, उनको मालूम नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आदमी नया है, इसको सिखाने की जरूरत है डांटने की नहीं, तो आपने उनको सिखाया, तालीम दी, देखो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं। और दूसरी बात यह कि आपने जब इस तरीके से उनको तालीम दी तो उनके इल्म में बात आ गई, लेकिन आपके अच्छे तरीके से सिखाने की वजह से उनके दिल में आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा बैठ गई कि आपके लिए वो क्या क्या हाल हो गया उनके दिल का, अल्लाह की कसम मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाए, आपसे पहले आपके बाद में मैंने कोई ऐसा सिखाने वाला नहीं देखा। तो गलती की इसलाह भी हो गई और इसलाह करने वाले की मोहब्बत भी दिल में बैठ गई, एक काम में दो फायदे हैं। लेकिन कब होता है ये, जब आदमी काम को सही तरीके से करे, अगर उल्टे तरीके से करे तो फायदा कम नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर एक बात ये हमको मालूम हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अच्छे तरीके से उनको समझाया तो उनकी इस्लाह भी हो गई और फसाद नहीं हुआ, बिगाड़ नहीं आया। तो हमको भी ये करना चाहिए कि हम अगर किसी को गलती करते देखें तो पहले मरहले में आप हम उसको तालीम दें, उसको सिखाएं, समझाएं, और उसके बावजूद अगर जानने के बावजूद अगर कुछ गलती है तब जाकर उसको डांटा जा सकता है, अगर डांटने में कुछ मसलहत हो, वरना खामखा का डांटना झगड़े को पैदा करने का जरिया बन सकता है। हो सकता है कि जिसको आप डांट दें वो आपसे ज्यादा पावरफुल हो, तो ऐसी सूरत में बजाय उसकी इसलाह होने के आपकी मरहम पट्टी की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वो झगड़े पे आ जाए, हो सकता है वो मारपीट पे आ जाए, और बजाय उसकी इसलाह होने की आप ही की दवाखाने में इसलाह की जरूरत पड़ेगी। तो ये गलती आमतौर से लोग करते हैं, घर में भी बहुत सारी बातें आदमी सिखाता तो नहीं कुछ न बीवी को न बच्चों को, और फिर कुछ गलती हो जाए तो डांट डपट पे आ जाता है। बच्चे को कभी सिखाया नहीं, कुछ गलती कर दिया उसने तो उसकी पिटाई कर दी। बीवी को कभी बैठ के दीन सिखाया नहीं, अगर कुछ गलती हो गई तो नाराज हो गया एकदम, डांट दिया उसको। तो पहले तालीम दे, तालीम के बाद अगर जबरदस्ती जानते बूझते कुछ गलती होती है तब जाकर आदमी डांट डपट कर सकता है, अगर उससे फायदा हो तो। जैसे कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को डांटा, इसकी मिसाल हमको खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती है। आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं, हशौतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसादतन, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तकिया बनाया, फीहा तमासील कअन्नहा नुमरुका, वो एक तकिया था, तकिए का कवर था, कवर के ऊपर मैंने तस्वीरें थी उसके ऊपर ऐसा बनाया डिजाइन, कुछ तस्वीर उसके अंदर आ गई। फजा फकाम बैन अलबाबैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो घर में दाखिल होने की बजाय आप दरवाजे की चौखट पर रुक गए, दरवाजे पर ही आप ठहर गए, अंदर नहीं, छोटा घर था सब दिखाई देता था बाहर से अंदर का, आप रुक गए। वजाला यतगैर वजहुहु, और आप जब ठहरे वहां पर तो आपके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया हो गए, आपके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। फकुल्तु मा लना या रसूल अल्लाह, कहती मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्या हुआ, मुझसे क्या गलती हुई। एक रिवायत में कि मादा अज़नबतु, मैंने क्या गुनाह कर दिया, मुझसे क्या बुरा हो गया, ऐसी क्या बात मुझसे हो गई कि आपके चेहरे पर मैं गुस्से के आसार देख रही हूं। सहाबा देखिए कितने सेंसिटिव थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि आपके चेहरे में तगैयुर को वो पहचान लेते थे और फौरन एहसास होता था कि मुझसे कोई ऐसी बात हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, और फौरन अपनी इस्लाह के लिए तैयार होते थे। आज सालों साल आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डांट की हदीसें सुनता रहता है, फुला जहन्नम में चला जाएगा, फुला पर लानत हो, फुला गुनहगार है, लेकिन सुनता रहता है सुनता रहता है, कभी उसका एहसास नहीं कि मैं किसकी नाराजगी वाला अमल कर रहा हूं। और नबी की नाराजगी वाला तो है ही है, वो अल्लाह की नाराजगी उससे बड़ी है, एहसास नहीं होता है कभी। कहने लगी मा लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमसे क्या हो गया। قال ما بال هذه الوسادة, आपने कहा ये तकिया कैसा है, ये तकिया कहां से आ गया। قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها, कहने लगी मैंने ये तकिया आपके लिए बनाया है और इसलिए बनाया है कि आप इस पर टेक लगाएं, आप इस पर लेटें, आपकी टेक के लिए काम आई है, आप इस पर लेटें सोएं, आप इसको सिराने इस्तेमाल करें, इसके लिए मैंने आपके लिए बनाया है। قال اما علمت ان الملائكه لا تدخل بيتا فيها صوره, اما علمت, क्या तुझको मालूम नहीं है, ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره, कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते हैं जिसमें तस्वीरें हों, जिसमें तस्वीरों का डिस्प्ले हो। फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते जिस घर में तस्वीरों के जरिए से जीनत इख्तियार की गई हो। وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, और दूसरी बात यह, ये तो घर में लगाने के लिए तस्वीरें, जानदारों की तस्वीरें इस्लाम में जायज नहीं है। और आपने कहा कि وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, और जो तस्वीरें बनाता है कयामत के दिन उसको अजाब दिया जाएगा। तो एक है तस्वीर बनाने वाला, दूसरा है तस्वीर अपने घर में लगाने वाला, दोनों के लिए अलग अलग वईद है, दोनों भी जायज नहीं है। लेकिन तस्वीर बनाना ये बड़ा गुनाह है, ये बड़ा गुनाह है कि तस्वीर बना रहा है आदमी और यानी कोई आदमी उसको घर में लगा रहा है, उसको जीनत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो कयामत के दिन तस्वीर बनाने वाले को अजाब दिया जाएगा। कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ أَحْيُ مَا خَلَقْتُمْ, अल्लाह ताला उन लोगों से कहेगा अब जो तुमने पैदा किया है, जिसकी तखलीक तुमने की है, जिसको तुमने क्रिएट किया है उसमें तुम जान भी डाल के दिखा दो, क्योंकि अल्लाह तो सिर्फ ढांचा नहीं बनाता है, अल्लाह ताला ढांचा बनाने के बाद उसमें हयात भी डालता है। तो तुमने अगर तस्वीर बनाई है, तुमने अगर मूर्ति बनाई है, तो तुमने इतना तो कर दिया मेरी मुशाबहत की, अब एक काम और करके बता दो, आधे में क्यों मुशाबहत करते हो, पूरे में करो, अब जान भी डाल के दिखाओ उसमें। तो डांट के तौर पर उनको कहा जाएगा कि अब इसमें जान डाल के दिखाओ। इसे एक बात यह भी मालूम होती है कि वो तस्वीर हराम है जिसमें जान होती है, समझ में आई बात। देखिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने कहा इससे मालूम होता है कि सजा क्यों होगी, ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें जान है तो उनसे कहा जाएगा अब जब इसको आधा बनाए तो पूरी जान भी डालो, तो मालूम हुआ ये उस तस्वीर के बारे में है जिसमें जान होती है। अगर आप घर बनाएं, आप पेड़ बनाएं, आप पहाड़ बनाएं, आप आसमान बनाएं, सूरज बनाएं, चांद बनाएं, इसमें कोई हुरमत नहीं है, इसलिए कि इसमें जान नहीं होती है। ये बुखारी की रिवायत थी। इससे एक बात ही मालूम हुई कि कभी आदमी डांट भी सकता है। आप गुस्से में आ गए, आप गुस्सा हो गए और आपने वही सुनाई वहां पर, और आपने क्या कहा, जुमला याद रखिए, अना अलिमती, मालूम नहीं तुझको, यानी मालूम इससे पहले आपने इस तरह की बात ताली मुसलमानों को दी थी, लेकिन आयशा ये समझ नहीं पाई कि इससे तकिया भी नहीं बना सकते, तकिए पर भी तस्वीर नहीं चलती है, आपने ये बताया कि ये भी नहीं चलता है। कभी आदमी सोचता है हाँ भाई अजमत के तौर पर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तकिया वगैरह में चल जाएगा, क्या मसला है, हम थोड़ी ना उसकी ताजीम और बुत के तौर पर थोड़ी कर रहे हैं उसको। क्योंकि आम तौर से मुशरिकीन का तरीका तस्वीरों में क्या था, वो अपने माबूद के तौर पर सूरतें बनाते थे। तो आयशा ने माबूद के तौर पर तो नहीं बनाया था, उन्होंने बस एक तस्वीर बना दी, उसको तकिया बना दिया उसका, आपने कहा यह भी नहीं चलेगा। वजह उसकी क्या है आपने यहां पर बताई कि जान डालने के लिए कहा जाएगा, तो जान वाली तस्वीरें नहीं चलती है। तो आपके घर का मामला है, बीवी है, और आप इन्हें डांटने के बाद कहीं जाएंगे नहीं। अगर आपको यकीन है कि फुलां इतना मजबूत है दीन में कि अगर इसकी गलती पर इसको डांट दो तो इतना समझदार है कि ठीक है सलाम अलैकुम करके जाएगा नहीं, अब तुम्हारा मेरा मामला खत्म, बल्कि वह आपसे जुड़ा रहेगा। वो इतना समझदार है कि वो आपकी डांट पर नहीं बल्कि अपनी गलती पर ध्यान देगा। अगर कोई ऐसा आदमी है और आपसे छोटा है, आपसे छोटा है, वरना आप घर पे जाके वालिद साहब को ही डांटना शुरू कर दिए, या किसी मौलवी साहब को ही डांटना शुरू कर दिए, तो ये नहीं चलेगा। बल्कि आदमी अपने मातहत को डांट सकता है अगर उस डांट से नुकसान नहीं होता हो, फसाद नहीं होता हो, और खुसूसन ऐसी सूरत में जबकि बताया जा चुका हो। इसकी एक मिसाल आप देखें, और एक मिसाल, मुआद इब्न जबल रजी अल्लाह तआला ने अपने कबीले में एक ईशा की नमाज पढ़ाई, और इतनी लंबी नमाज पढ़ाई कि पब्लिक का हाल खराब हो गया। क्या पढ़ाया उसमें, उन्होंने सूरतुल बकरा शुरू कर दी। अब एक साहब आए, ऊंट बांधा, नमाज में शरीक हुए, अब देखा हजरत ने बरा सूरह अल बकरा शुरू करी। कुरान की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सूरह बकरा। तो अब उस आदमी ने क्या किया, वो बेचारा थक हार के आया था, ऊंट चराने वाला आदमी, और इतना परेशान हो गया, मेहनती आदमी थक थका के नमाज के लिए आया है। अब वो जमात से अलग हो गया, उसने इनफिरादी अपनी नमाज बची हुई मुकम्मल की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, कहा आपका आदमी देखो हमारे पास आता है, ये साहब हमारे इमाम साहब ऐसी लंबी नमाज पढ़ाते हैं, हम लोग काम काज वाले लोग हैं और इतनी लंबी नमाज हमारी हालत खराब हो जाती है। साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को बुलाया और वाज में नसीहत करते वक्त इतना गुस्से में मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा था। इमाम बुखारी ने इसको जिक्र किया अपनी सही में किताबुल इल्म में कि वाज में गुस्सा कर सकते हैं कि नहीं, डांट सकते हैं कि नहीं। और आपने कहा अफत्तानुन अंत या मुआज़, ए मुआज़ तू फितना पैदा करता है, क्या तू लोगों को फितने में डालता है दीन के बारे में, करें कि नहीं करें, ऐसा बनाता है उनको, ऐसी पोजीशन में डालता है कि नमाज पढ़ना कि नहीं पढ़ना, हमने ऐसी नमाज पढ़ना कि नहीं पढ़ना। तो लोगों को फितने में डालता है। क्या ये सूरत ये सूरत ये सूरत नहीं है? छोटी छोटी सूरतें आपने, तीसवें पारे की सूरतें जो हैं आपने वो सूरतें गिनाई, और कहा तू ये नहीं पढ़ा सकता है, आपने डांट दिया उनको। तो कभी ऐसा हो तो आपको मालूम है ये कहीं नहीं जाएगा, इतना पुख्ता है, इतना वफादार है, इतना समझदार है कि अगर इसको डांट भी दूं तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये नाराज होके ठीक है मैं जा रहा अभी वापस मक्का को, या कहीं और जा रहा हूं मैं, छोड़ हिजरत करके जाता हूं यहां से, आपकी जमात में अभी मैं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ये पक्का आदमी है, इतना पक्का आदमी है कि आपने, और देखिए ताल्लुक कितना कवी है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ का हाथ हाथ में लिया और कहा कि ए मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और नमाज के बाद ये कलिमात कभी छोड़ना मत। ये वही साहबी है, अल्लाह आईनी अला दिक्रिका और शुक्रिका और हुस्न इबादत कि मैं तुमसे मोहब्बत, तो इतने करीबी हैं, आपस में मोहब्बत है। तो ऐसा आदमी अगर कोई है जिसके आप, जिसके बारे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर उसकी गलती पर आप डांट देते हैं, और ये समझदार आदमी है, ऐसा भी नहीं कि अनजान आदमी अभी अभी आया है, नहीं, पक्का आदमी, इतना पक्का कि लोगों की हिदायत के लिए, तालीम के लिए भेजा है अगर, तो मुआज़ इब्ने जबल को भेजा है ना, तो ऐसी कौम के पास जा रहा है जो अहले किताब है, सबसे पहली चीज उनको बताना ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर नमाज, फिर ज़कात। तो इतने पक्के हैं कि आलिम है, और आपने हदीस में कहा भी कि मुआज़ इब्ने जबल क़यामत के दिन उलमा की एक जमात के सरदार होंगे, तो एकदम वेल क्वालिफाइड है, फारिग है नबवी मदरसे का, फिर ऐसी गलती, हिकमत नहीं। तो आपने क्या कर दिया, डांट दिया उनको। तो ऐसा किया जा सकता है बशर्ते कि फसाद उससे नहीं हो, बशर्ते कि कोई गलती नहीं। बाद औकात डांट देने से नुकसान होता है, आदमी अपनी इसलाह की बजाय दुश्मन हो जाता है, साजिशें करने लगता है, और यानी फितना पैदा करता है, जमात बंदी ग्रोह बंदी करता है। तो ऐसे वक्त में ऐसे आदमी को नहीं डांटना चाहिए, उसको प्यार मोहब्बत से समझाते रहना चाहिए। बहरहाल तो ये एक बात मालूम हुई कि कभी डांटा भी जा सकता है अगर उसका वाकई फायदा हो तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्यार मोहब्बत से समझाते रहें, लोगों को ऐसा लगने लगता है कोई सीरियस बात नहीं है, घर में बीवी ने गलती की, आपने समझाया, फिर समझाया, फिर उसको लगता है तो समझाते रहते, कभी डांटते नहीं, कोई डरने की चीज नहीं है। कभी गलती इल्म की कमी की वजह से होती है, कभी गुनाह की हिम्मत की वजह से होती है, गलती की संगीनी का एहसास नहीं होने की वजह से होती है, लेकिन कभी घर का बड़ा डांट दे एकदम, क्या लगा रखा है, डांट दिया चौक मार, अरे बाप रे, तो बहुत डेंजर चीज है, इतना गुस्से में आइंदा कभी ये गलती दोहराना नहीं। तो कभी डांट देने से भी मालूम होता है कि ये गलती बहुत डेंजर है, ये हमेशा नहीं डांटते हैं, इस पे डांटा का मतलब ये क्या है, बहुत सीरियस है। तो कभी गलती की संगीनी बताने के लिए डांटना भी जरूरी होता है, जरूरी होता है। तो ये कौन कर सकता है, वाकई जिसको सेंस हो कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। देखिए आदमी को जमीन खोदने के एतबार से पौधा लगाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, कुल्हाड़ी इस्तेमाल करना है या नहीं, और पेड़ काटने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, कुदाल इस्तेमाल करना है कि नहीं, समझ रहे, उल्टा हो गया ये। पेड़ काटने के लिए क्या लगता है, कुल्हाड़ी, और जमीन खोदने के लिए क्या लगता है, सब कुल्हाड़ी बोल रहे हैं, कुदाल लगती है। तो जो जहां इस्तेमाल करना है अगर वहां इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा, अगर इधर का उधर इस्तेमाल करेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। तो क्या कहां इस्तेमाल करना है एक आदमी को मालूम होना चाहिए, कौन सा तरीका कहां एप्लीकेबल है। और आगे आइए, गलतियों की इस्लाह में एक आदमी बाद औकात ये समझता है कि बड़ों की गलती गलती होती है, बच्चों की गलती गलती नहीं। अरे अभी तो बच्चा है हमारा गुड्डू, अभी बच्चा है। अब बच्चा जब बड़ा होता है तो इसको बच्चा बना देता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बचपन में अगर उनकी इस्लाह नहीं की जाए तो बाद में माँ बाप को खून के आंसू बहाने पड़ते हैं, और उन आंसुओं से जिंदगी न बदलती है न बच्चे की इस्लाह होती है। बचपन ही से बच्चों की गलतियों पर उनको टोकते रहना चाहिए ताकि उनको मालूम हो कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। माँ बाप का मामला अजीब है कि बाज़ औकात छोड़ देते हैं तो छोड़ ही देते हैं, और जब इस्लाह पर आते हैं तो तोड़ देते हैं, या तो छोड़ो या तो तोड़ो, बीच में कुछ नहीं है। कि गलतियों पर गलतियां बच्चा करता जाए, टाइम नहीं है इसलिए उसकी इस्लाह नहीं कर रहा है, और एक दिन पूरा टोटल मार के पूरा अकाउंट क्लियर कर देता है। बच्चा सोचता है मैं तो बस बाहर जा रहा था, इतनी धुलाई है, बगैर पूछे घर के बाहर कदम रखा, इससे पहले 50 बार गया हूं, कभी कहा नहीं कुछ, और आज बस एक कदम घर से बाहर रखा, इधर आ, कहां जा रहा है, बाहर, पूछा नहीं, दे देना धुलाई उसकी। बोला ऐसी क्या गलती है, इससे बड़ी बड़ी गलतियां मैंने की है, कभी टोका नहीं, लेकिन बस बाहर चला गया मैं, और इससे पहले भी गया हूं तो आज पिटा। वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है मतलब, है उसको समझ में नहीं आता, और बहुत ज्यादा पिटाई से उसके दिल में पैदा होता है ये जालिम है, छोटी गलती पर इन्होंने ज्यादा पिटाई की मेरी, और वो बागी बन जाता है, फिर छुप के गलतियां करता है और आपको बताता नहीं कि वो क्या कर रहा है, चोरी छुपे गलतियां करने लगता है। क्यों? इसलिए कि आपने उसका एतमाद खत्म कर दिया, उसको लगता है कि ये जालिम है, ये अदल नहीं करते हैं, ये छोटी गलती पर ज्यादा पिटाई कर देते हैं। तो बच्चों की गलतियों पर उनको बराबर उस वक्त टोकना चाहिए और बताना चाहिए कि ये गलत है और क्यों गलत है, एग्जैक्टली क्या गलत है उनको बताना चाहिए। बहुत सारे लोग बच्चों की पिटाई करते हैं तो उनसे सवाल पूछते रहते हैं, ऐसा करता है फिर पिटाई, ऐसा करेगा फिर पिटाई, उनको बताना है तुमने ये किया, देखो इस्लाम में नहीं चलता है, गाली दी तुमने, गाली बुरी चीज है, तुमने बगैर इजाजत के पड़ोस से कोई चीज तुम उठा के ले आए, ये चोरी है, तुमने फुलां के बच्चे को धकेल दिया, अपने साथ खेलने वालों के साथ ऐसा नहीं करते हैं, तुमने दूसरे की चीज छीन के तोड़ दी, ये उसकी थी, तुमने तोड़ा, नुकसान किया, नुकसान नहीं करना पड़ता है दूसरों का, खेल में ऐसा नहीं करते हैं, गुस्से में आके नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो उसको आप एजुकेट करें, और फिर अगर वो उसके बावजूद करता है जानबूझ के तो कभी सजा भी दें उसको। इसलिए आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बच्चे को नमाज सिखाओ, नमाज का हुक्म दो, कब, जब वो 7 का हो जाए, फिर उसके लिए बफरिंग टाइम कितना है, 3 का, ट्रेनिंग टाइम 3 का है उसके, टाइम दो उसको, मोहलत उसके लिए 3 की है, फिर 10 का जब वो हो जाए और फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है तो फिर उसको मारो, यानी उसको आपने पहले सिखाना है, पहले मारना है फिर सिखाना है, ये कायदा है, नहीं पहले सिखाना है, फिर भी अगर सिखाने के बाद इतनी मुद्दत गई है नमाज नहीं पढ़ता है, फिर अगर नहीं पढ़ेगा 10 का, तो अब आपने उसकी पिटाई करना है। हम पहले सिखाते नहीं है और फिर बाद में अचानक एक दिन उसको मारपीट शुरू कर देते हैं और बीवी को भी उस दिन डांट देते हैं, सिखाने नहीं आता इसको, बोलिए आपका भी तो काम है, आपको बताने नहीं आता है, आपने हमको किधर सिखाया जो मैं इसको सिखाऊं, रोजाना मेरा तो कपड़े और बर्तन और खाने और इसी में टाइम जाता है, वो नहीं मिले तो आपके अंदर जिन आ जाता है, पढ़ने को टाइम किधर है, मुझको तो बिस्तर पर पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता दिन भर में, ये पढ़ने के लिए कब मिलेगा, तो आप ही की खातिर ये इतनी मुसीबत आई है, आप ही की वजह से तो हम पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं, ना दर्स सुनने के लिए टाइम है, ना हमको कुरान पढ़ने के लिए टाइम है, ना कुछ पढ़ने के लिए, तो इनको पढ़ाने के लिए कहां से टाइम आएगा, हम सोचें हमारे घरों का हाल क्या है, उसका जिम्मेदार कौन है, उनका उसका जिम्मेदार कौन है, अगर चाय में शक्कर ना हो गलती से भूल जाए तो आप बताइए क्या हाल होता है बीवी का, क्या करता है शोहर, तो चाय में शक्कर नहीं हो तो इतना गुस्सा, और घर में नमाज नहीं हो तो, घर में नमाज नहीं रहे तो भी चलता है पर चाय में शक्कर होना चाहिए, खाने में नमक होना चाहिए, खाने में नमक है कम हो तो, और बीवी एक वक्त की नमाज पढ़े और एक कम कर दे तो नमाज कम की चलेगा, नमक कम नहीं करना चाहिए तुझे, ओ देखिए कितना बड़ा कायदा है। इसी का नतीजा है कि घरों में दुनियावी एतबार से भी बिगाड़ आता है और बरकत घरों की उड़ जाती है, फिर खूब कमा रहे हैं हजरत, भाग दौड़ करके ला रहे हैं, डाल रहे हैं, ला रहे हैं, डाल रहे हैं, कहां है सुराग, वो घर में समझ में नहीं आ रहा, बरकत नहीं घरों के अंदर। इसलिए सहाबी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम अपनी बची हुई नमाज फराइज के अलावा घर में पढ़ो, इससे तुम्हारे घर में अल्लाह खैर डालेगा, तुम जाओ घरों में तो सलाम करो, ये तुम्हारे घर वालों के लिए खैर और बरकत का जरिया है। हमारे घरों से आमाल निकल गए तो मालों में भी नहुसत और बर्बादी पैदा हो गई। आमाल अगर निकल जाएंगे घरों से तो फिर बरकत भी निकल जाएगी, इसको याद रखिए। तो बच्चों की तरबियत करना चाहिए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि अखद अल हुसैन इब्न अली तमरतन मिन तमर सदकती फजअलहा फी फीही। हुसैन हसन इब्न अली हत अली के बेटे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हत फातिमा के बेटे, छोटा बच्चा है, खजूर उठा के मुंह में डाल ली, लेकिन वो खजूर कौन सी थी? सदके की खजूर थी, सदके की खजूर है, और अहले बैत के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपके घर वालों के लिए सदके का माल खाना हराम था। सदके का माल नहीं खा सकते हैं, हाँ हदिया खा सकते हैं, सदका नहीं। तो अब वो सदके की खजूर खा ली बच्चे ने। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किख किख, थूक दे, किख अरबी ज़बान, अरे थूक थूक दे इसको, इर्मी बिहा, डाल दे उसको नीचे, फेंक दे उसको। अमा आलिमता अन्ना ला नकुलु सदका, तुझको मालूम नहीं है हम सदका नहीं खाते हैं, तुझको मालूम नहीं हम सदका नहीं खाते हैं। एक छोटा बच्चा, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत मौजूद है, एक छोटा बच्चा है, उसने बच्चा, बच्चे की जेब उसका मुंह होता है, जो भी मिला खा लिया, जो भी मिला खा लिया, आपकी दवाएं भी मिलेगी तो खा लेगा वो, तो उसको मालूम नहीं है, उसको तमीज नहीं होती है, उसको अभी तक के जजमेंट नहीं है उसके अंदर। अब हमारे सामने अगर कुछ ऐसा हो जाए, खा ले आइंदा से मत खाना, अरे बच्चा ही है, बल्कि बाद लोग तो खा खा, कोई मना, अरे ये खा रहा है हराम है, अरे बच्चा ही तो है, बच्चे पे शरीयत है कि कलम उठा लिया गया इस पर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा, तुझको मालूम नहीं हम सदका नहीं खाते। तो एक बच्चे के लिए भी ख्याल रखा जाए कि वो कोई ऐसा काम न करे जो इस्लाम में नहीं है। कई लोग हैं बच्चे पूरे घर में नंगे फिरते हैं, मां बाप सोचते बड़ा थोड़ी छोटा है, पूरे घर में बनियन पहना हुआ है, हाथ में खाने की कोई चीज है चॉकलेट, और पूरे घर में घूम रहा है, खाता फिर रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर भी घूम रहा है, कुछ उसको एहसास नहीं है, वो बच्चा, उसको क्या मालूम है, वो तो पैदा ही बगैर, वो तो बगैर बनियन के पैदा हुआ है, उसको कपड़े ही नहीं थे उसके ऊपर, पहनाना तो आपने उसको है। अब माँ भी बोलती है कि अब बार बार कौन पहना है, उसी में पेशाब कर देता है, तो उसको क्या करो, ओपन एयर में ही रखो, पूरा मसल धोने का मसला ही नहीं, चलता फिरता है वो, चार पांव पे नहीं चल रहा है, अभी दो पांव पे चलना शुरू किया उसने, खेलता कूदता है और बगैर, नीचे खाली ऊपर भरा हुआ। अब बताइए जब वो बच्चे बच्चियां सब उनमें खेलेगा घर के अंदर, उन लोगों में से हया निकल जाएगी बचपन से, लेकिन अगर बचपन ही से उसको, अरे तो क्या कर रहा है तू तो? नंगा, वो फौरन भागते गए और पहन के आया उसने, तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये भी छुपाने की चीज है, हया उसमें आएगी, हया उसमें आएगी। लेकिन हमारे घरों, ये एक मिसाल है, ऐसी कितनी मिसालें हैं, कितनी चीजें बच्चों में होती हैं, झूठ बोलते हैं बच्चे खेलते खेलते, हमारे सामने झूठ बोलते हैं। अब हम जाने तो बच्चा है, उसको बुला के बोलना चाहिए, तूने जो बात की थी खेल में, तूने झूठ की, पहले तूने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा ना, तूने झूठ बोला है तूने, वो इकरार करेगा, पहले तो बोलेगा नहीं बोला मैंने कुछ, क्योंकि बच्चे के पास पहले ही पूछने के बाद नो होता है, वो नहीं मानता है, बाद में मानेगा हाँ मैंने ऐसा किया। उसको आप शुरू से आदत डालें, और आप क्या आदत डालें उसको, कि तू सच बोलेगा तो पिटाई नहीं करूंगा, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने सच बोला तो मेरी पिटाई नहीं होगी, सिर्फ मुझको तंबीह की जाएगी। दो चार मरतबा अगर उसको एक्सपीरियंस हो गया कि सच बोले तो मार से बच जाते हैं, वो हमेशा सच बोलेगा। लेकिन आपने कहा उसको, अब बाप कभी कभी बहुत अकलमंद बेवकूफ होता है, अकलमंद बेवकूफ यानी पहले अकलमंद उगलवाने में और बेवकूफ इस्लाह में, पहले कहेगा तू बोल सच बोल नहीं मारूंगा, अब बच्चे ने बता दिया हां मैंने चोरी की थी, फिर धुलाई उसकी, चोरी करता है, अब उसको मालूम पड़ गया कि सच बोलने में भला नहीं है बल्कि बला है, वो कभी नहीं उगलेगा, कभी नहीं बोलेगा, उसको मालूम पहले तो बोलते हैं ऐसा बोल नहीं करूंगा, बाद में वादा खिलाफी करते हैं ये। लेकिन अगर वाकई आप उसको बोलते हैं, देख सच बोला इसलिए तू बच गया और ये गलत काम किया तूने, आइंदा अगर ऐसा करेगा तो बहुत पिटाई करूंगा, और हाँ देख सच बोला तूने, बहुत अच्छी अच्छा काम किया तूने, हमेशा सच बोलना चाहे नुकसान, और तो जब भी सच बोलेगा पिटाई से बचेगा। कभी भी आप उसको जवान हो जाएगा तब भी आप पूछेंगे उसको याद, उसकी ट्रेनिंग आपने सीखी है, सच बोलना ही आपने सीखा उसको, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि सच बोलने से बच जाते हैं, सच बच, वो फिर दिन में भी सच बोलेगा और जिंदगी में सच बोलेगा, उसको सच की कदर होगी। शुरू से ही झूठ बोलना आप उसको सिखा दें, जा बोल बाहर जाके अब्बू नहीं है घर में, वो तो बोला अब तो अब्बू बड़े बोलते हैं तो छोटों का क्या है, आप दूसरों से बोल रहे हैं वो आपसे बोलेगा। ऐसी कई चीजें हैं, हम बहुत गलती करते हैं। बच्चों की तरबियत में हमको याद रखना चाहिए कि हम छोटे बचपन से उनकी इसलाह करें और उनको एजुकेट करें। देखिए आपने क्या कहा, दो चीजें यहां की, किख किख इर्म बिहा, थूक दे उसको, फेंक दे उसको। नंबर एक, प्रैक्टिकली उसको उस गलती से बाहर निकालना, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी चीज, अम अलिमता अन्ना ला नकुलु सदका, तुझको मालूम नहीं है हम सदका नहीं खाते हैं। तो आपने क्या, कोई आदमी बोले बच्चे को इतना सदका नहीं खाते हम, क्या इतना मसले मसाइल में बच्चों को कहीं को डाल रहे, बुढ़े भी तो नहीं अभी तक, बच्चे को आप मसले मसाइल सिखा रहे हैं। नबी क्या कर रहे हैं, छोटा बच्चा है छह साल का, मुश्किल से है छह साल का, मुश्किल से है, आप बच्चे को ऐसा बच्चा जो उठा के खजूर डाल दिया, बताइए कितना एजुकेटेड है वो, कितनी उम्र का है वो, आप उस बच्चे को सिखा रहे हैं हम सदके की खजूर नहीं खाते हैं, एक शरई मसला उसको बता रहे हैं, बच्चे याद रखते हैं आप भूल जाते हैं। बच्चे आपको बोलते हैं आपने उस दिन कहा था ना मुझको ले जाएंगे गार्डन को, बच्चे बराबर याद रखते हैं, बच्चों को बराबर याद रहता है, हम भूल जाते हैं, बच्चों को याद रहता है, बच्चे याद रखते हैं, हम बोलते बच्चा उसको क्या याद रहेगा, अरे आपको याद है कि नहीं बचपन का, आपको याद रहता है तो उसको भी याद रहता है। तो हम बच्चों को एजुकेट करें, उनमें याददाश्त की कैपेसिटी होती है, उनकी मेमोरी बहुत रिसेप्टिव होती है, हम उनको इल्म देते चले जाएं, समझ में आएगा नहीं आएगा बाद में याद तो रहेगा, मेमोरी का हिस्सा तो रहेगा, वो याददाश्त का हिस्सा रहेगा। इसलिए एक बात ही मालूम हुई कि गलतियों की सलाह सिर्फ बड़ों की नहीं है बल्कि ज्यादा अहमियत बच्चों की है, क्योंकि अगर बच्चे को बचपन ही से आप उसकी सलाह करें तो आपको बाद में तकलीफ नहीं होगी, वो बच्चा बचपन ही से परवान चढ़ेगा तो सही मिजाज के साथ बढ़ेगा, बाद में आपको बहुत घसना नहीं पड़ेगा उसको। एक बर्तन है आपने रख दिया ऊपर उठा के, अगर आप बार बार उसको धोते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, आप देख लीजिए औरतों से पूछिए घर पे जाके, और अगर साल के बाद आपने वो बर्तन ऊपर से उतारा नीचे, उस पर जो धूल जमी है वो धूल उससे चिमट गई है, अब उसको आप सिर्फ झटक के कपड़े से आप साफ नहीं कर सकते, आपको बहुत घसना पड़ेगा उसको, बल्कि बाज औकात जंग भी लग सकता है किसी चीज को। तो एक चीज को आप छोड़े रखें उसको जंग लग जाता है, खराब हो जाती है वो चीज, आप उसको बार बार वक्त पर साफ करते रहें वो चीज साफ रहती है। ये आम कायदा है, ये बर्तन का नहीं, टेबल का नहीं, शीशे का नहीं, बल्कि इंसान के दिल और उसकी अकल का भी हाल है, उसको बार बार साफ करते रहना चाहिए। तो ये कायदा है, आदमी अपनी कार को साफ करता है अपने घर को साफ नहीं करता है, अपनी बाइक को बराबर चमकाता रहता है, सुबह उठ के बराबर दांतों को चमकाता है, कि घर दिल दिल को साफ करना भी तो जरूरी है, ये कौन करता है। तो ये जिम्मेदारी इसको हमको करना चाहिए। तो मालूम ये हुआ बच्चों को भी तंबीह करना चाहिए, इसलाह करना चाहिए, बच्चा है करके उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नसीहत में बच्चों को बड़ों की तरह और बड़ों को बच्चों की तरह नहीं समझाना चाहिए। एक आदमी हर एक की उम्र का लिहाज करे, उसके सोशल स्टेटस, उसकी जो समाज में उसकी पोजीशन, उसका भी लिहाज करें। मसलन एक आलिम साहब हैं, बयान दे दिया, आप पब्लिक में उसको कुछ भी बोलना शुरू कर दिए, क्या मौलवी साहब आपको अकल नहीं है, आपको मालूम नहीं, इतने समझदार है कि आप ऐसी पागलों से हरकत करते, क्या बोल दिया आप? अब आपने चार आदमी के बीच में उसको बेइज्जत कर दिया, ये गलती है। कोई आदमी बड़ा है, कोई उम्र दराज है, बुजुर्ग है, आप उसको चार आदमी के बीच में बेइज्जत कर दी, या ऐसे अंदाज में आपने बात की कि उसकी बेइज्जती आपने कर दी, उसकी उम्र का लिहाज नहीं किया आपने। कोई आदमी समाज में बड़ा मर्तबा रखता है, लोग उससे डरते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं, आपने अपने आप को चमकाने के लिए कि देखो मैं भी कुछ हूं, आपकी डेयरिंग बताने के लिए, या आप कि इल्म को लोगों के सामने बताने के लिए आपने उसकी गलती पकड़ के दिखाई लोगों के सामने। देखो मैं भी कैसा गलती पकड़ता हूं, किसी को छोड़ता नहीं हूं, बड़ा हो छोटा हो सब मेरे आगे छोटे हैं। आपने अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए उसको बेइज्जत कर दिया, उसकी इसलाह नहीं होगी बल्कि उसका नुकसान बाज़ औक़ात होता है। एक आदमी किसी बड़े की बेइज्जती कर दे लोगों में, वो बड़ा अपनी ताकत इस्तेमाल करता है बजाय अपनी इसलाह के, वो अपनी ताकत इस्तेमाल करता है। और बाज़ औक़ात अगर वो इल्मी मैदान का आदमी हो तो उसके अंदर अगर नफ्स जाग जाए तो फिर वो बराबर अपनी दलीलें जमा कर सकता है अपनी गलती के साबित करने के लिए। तो अब वो गलती बजाय गलती रहने के एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन जाता है कि वो साबित होता है कि नहीं ये सही है, और वो गलत लोग सही मान के चलने लग जाते हैं। तो ये नुकसान हमारा बाज़ औक़ात हो जाता है इस्लाह की गलत कोशिश की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन लम युजिल्ला कबीरना व यरहम सगीरना व यारिफ लिआलिमिना हक्कहु। इसको इमाम अहमद और हाकिम ने रिवायत किया है। आप फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं है जो मल्लम युजिल्ला कबीरा, जो हमारे बड़े का इजलाल न करे, उसकी जलालत कद्र को पहचाने नहीं, उसकी बड़ाई को समझे नहीं, उसका एहतराम न करे, और वया यरहम सगीरा, जो हमारे छोटे पर रहम न करे, वह आरिफ लिआलिमिना हक्कहु, और जो हमारे आलिम का हक नहीं जानता है, वह हम में से नहीं है। आलिम का भी हक होता है, आलिम का हक ये होता है कि उसकी इज्जत की जाए, उसकी बेइज्जती न की जाए। उसका हक होता है कि उससे दीन सीखा जाए, उसका हक होता है कि उसकी बात मानी जाए अगर वो गलत ना हो, उसका हक होता है कि उसकी सहूलत का ख्याल रखा जाए, उसकी सहूलत का ख्याल रखा जाए। बेचारा आलिम सोया हुआ मस्जिद में थक थका के, आप जगा रहे हैं, उठो आपकी ड्यूटी है, मसला बताओ एक हमको। अब बेचारा वो थक के सोया, उसको न सोने मिलता है न खाने मिलता है। अब आप उसको बोले आपका तो काम, बोले भाई आराम करना, आराम नहीं, आप उम्मत की जिम्मेदारी आपके ऊपर, उठो। अब ये अपनी सहूलत से आया है, उसकी सहूलत नहीं देख रहा है। इसको हफ्ते में महीने में एक बार छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी के दिन आया, चलो मैं तो छुट्टी पे हूं, वो कभी आता नहीं है। लेकिन आलिम साहब की कभी छुट्टी नहीं होती बेचारे की। अब उसकी सहूलत का कोई लिहाज नहीं, अपनी सहूलत से उसको रात के 3 बजे उठा के एक दलील देना है, उसको बताओ आप। ये आलिम का हक होता है, उसका एहतराम करना, उसकी सहूलत का ख्याल रखना, और उसकी इज्जत करना, उसकी बात मानना। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं जो हमारे बड़े का एहतराम न करे, और हमारे छोटों पर रहम न करे, और हमारे आलिम का हक न पहचाने। ये हदीस बताती है कि हर आदमी को उसके मर्तबे के मुताबिक उससे मामला करना चाहिए। तो इस्लाम में भी अगर किसी आलिम ने किसी बयान में गलती कर दी, या किसी आलिम की कोई बात अमल में आपने देखी जो वाकई मुनासिब नहीं थी, अब मसलन कोई आलिम साहब हैं, उन्होंने वो तंबाकू खा लिया, मसलन पान खा रहे हैं, या कुछ उन्होंने ऐसा किया जो नहीं है, अब आपने देखा कि चलो भीड़ जमा हो गई, अपना काम बन जाएगा, अपना आलिम से भी ऊपर का हाथ दिखना चाहिए, आपने कहा जरा आओ आलिम साहब से जरा भिड़ते हैं, आइए। आलिम साहब से कहा गया, आलिम साहब ये क्या है, आप ऐसे ऐसे करते हैं, अब वो आलिम बेचारा पकड़ा गया। या तो वाकई वो तकवा की बुनियाद पर कहेगा भाई देखो मसला ऐसा ही है, मुझसे गलती हो गई, ये बहुत दिल गुर्दे की चीज है, या फिर आलिम कहेगा अरबी आती है क्या, अब आपको अरबी नहीं आती है, कौन सी हदीसें बताओ जरा इस बारे में, तंबाकू हराम में कहा है, अब इसको नहीं मालूम, ठहरो आप लोग इधर रुको मैं आता हूं पूछ के। तो आलिम कहेगा देखो ऐसे ऐसे उठ के आ जाते हैं, मसला तो मालूम नहीं, दलील मालूम नहीं है, ना अरबी पढ़ने आती है, अगर पढ़ के भी बता दिया कुरान में तो एक जगह ऐसा है, कहें ठीक है आयत पढ़ के सुनाओ जरा। अब आयत पढ़ के सुनाई इसने, आलिम साहब क्या बोलेंगे, आपकी तजवीद में एक आयत में 15 गलतियां हैं। अब टॉपिक क्या हो गया, तंबाकू तो गई, अब मामला इसकी तजवीद का हो गया। कहां पढ़े आप, कहां से सीखते आप, रोजाना आप आते हो, मैं रोजाना बैठता हूं पढ़ाने के लिए, तजवीद में तो कभी दिखते नहीं आप, आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, आप मसले मसायल में घुस गए। अब उसको मौका मिल गया, पब्लिक भी हंस रही है, तो ऐसा हो सकता है। इसकी वजह अगर आपने देखा कि आलिम साहब अकेले कब मिलेंगे, अकेले गए, कहा देखिए आप अल्लाह ने आपको इतना इल्म दिया है और आप इतने अच्छे इंसान हैं, हम बहुत एहतराम करते हैं आपका, लेकिन एक बात ऐसी जिसकी वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझ सकते हैं कि गोया कि हलाल है, क्योंकि आलिम नबियों के वारिस होते हैं और लोग आलिम के कौल से नहीं बल्कि अमल से भी दलील पकड़ते हैं। कभी आप बताइए आपका अमल देख के कि आप तंबाकू खाते हैं या आप दाढ़ी कतरवाते हैं या आप ऐसा आपका टखनों से नीचे पजामा है, अगर कोई देख ले इसको और ये समझे कि जायज है तो आप उसका सबब बन सकते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आपको नुकसान दुनिया या आखिरत में हो। मैं आपको अकेले में इसलिए कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें, हो सकता है मुझसे समझने में गलती हो रही हो, अगर ऐसा है तो आप मुझको समझा दें, लेकिन ये बात है, ये बात है, इसलिए मैं एक मोहब्बत की वजह से आपके एहतराम की वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कितना अच्छा होगा, लेकिन इसमें क्या है अपनी इज्जत थोड़ी मिलती नहीं अपने को, थोड़ा अपना झंडा ऊंचा नहीं होता है इससे, इसमें नफ्स टूटता है, छोटा बन के बोलना पड़ता है और छोटा बनना तो हमने बचपन से सीखा नहीं, हम बचपन से बड़े थे, तो ये मुसीबत होती है। तो इसलाह के लिए पहले अपनी इसलाह करनी पड़ती है, अपने दिल की इसलाह करनी पड़ती है, अपने को सेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद फायदा होता है, क्योंकि जिसका मकसद वाकई नतीजा हो, इसलाह होना हो, वह आदमी उस नतीजे के लिए अब पहले अपने को एडजस्ट करता है, लेकिन जिसका मकसद अपनी बड़ाई हो, सामने वाले की बेइज्जती हो, तो वो तो इसलाह हो या ना हो वो अपना मकसद याद रखता है, मकसद उसका पूरा हो गया, अगर बेइज्जती हो गई तो इसका नाम रोशन हो गया तो मकसद पूरा हो गया उसका, चाहे फिर उस आदमी का सुधार हो या नहीं हो। तो ये नीयत का मामला बहुत बड़ा दखल इसमें होता है। तो ये भी याद रखें कि जिससे हम बात करें बड़ों से, तो उनकी इसलाह के वक्त में हम समझदारी का तरीका इख्तियार करें कि इसलाह हो जाए और उनकी इज्जत पे कोई आंच ना आए। आप खुद अपने बारे में सोचें, चार आदमी के बीच में कोई आदमी आपका इंसल्ट करके आपको बोले मानो अभी लिख के दो, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, इल्ला माशा अल्लाह। बाद वक्त आदमी पहले नहीं बोलता फिर बाद में सोचता जाने दो अभी बेइज्जत नहीं मानने में भी इज्जत जाएगी, तो मान लो ऐसा भी होता है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आदमी की नीयत बहुत ऊंची चीज होती है, नीयत आदमी को ऊंचा करती है, नीयत आदमी को गिरा देती है। बहुत से छोटे काम नीयत की वजह से ऊंचे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और बहुत से बड़े काम नीयत के घटिया होने की वजह से छोटे और गिरे पड़े काम बन जाते हैं, आखिरत की तराजू में उनका वजन नहीं होता है। और आगे आइए, इस्लाह में, गलतियों की इस्लाह में एक चीज ये भी है कि किसी एक गलती की वजह से एक आदमी को मुजरिम ना बना दिया जाए। एक आदमी वाकई अच्छा इंसान होता है और कभी कभी वो बड़ी गलती भी कर देता है, उस एक गलती की वजह से उसको डिनाउंस नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल मर्दूद नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी बाकी खूबियों को भी निगाह में रखना चाहिए। बड़े आदमी से बाज़ औक़ात बड़ी गलती होती है, अच्छे आदमी से बाज़ औक़ात एक बुरा काम हो जाता है। तो अब उस एक गलती की वजह से उसको हमेशा के लिए रद्द कर देना, ये भी इस्लामी तरीका नहीं है। इस्लामी तरीका यह है कि उसकी गलती को गलती माना जाए और ओवरऑल वो कैसा है, मजमूई तौर पर उस पर क्या हुक्म लगेगा, ये भी देखना चाहिए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला कहते हैं, अन्न रजुलन अला अहदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इस्मुहु अब्दुल्लाह व कान युलक्कबु हिमारन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक साहब थे, उनका नाम अब्दुल्लाह था और उनको लोग हिमार हिमार कहते थे, उनका लकब था। वकाना युद्हिकु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन साहब की आदत थी कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते तो आपको हंसा दिया करते थे, ऐसी कोई बात बोल देते थे जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हंसी आती थी। तो थोड़ा सा खुश मिजाज, ज्यादा ही खुश मिजाज इंसान थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करते थे। وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب, और इनका हाल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी इससे पहले भी उनको एक मर्तबा शराब पीने की वजह से सजा दे चुके थे। कायदा कायदा है, तो शराब पीकर आने की वजह से उनको लाया गया, उनको सजा उसकी दी गई। फउतिया बिही यौमन, फिर एक बार ऐसा हुआ कि फिर एक बार उनको लाया गया। फअमरा बिही फजुलिदा, आपने हुक्म दिया शराब की हालत में लेकर आए, तो आपने हुक्म दिया तो उनको सजा उसकी दी गई। शराब पीने की सजा क्या है? जो जिसको हाथ से, जूते से, कपड़े से, जैसा है उसको मारे। इस्लामी सजा उसकी ये थी उस जमाने में, और आज भी यही है इस्लामी हुकूमत में। फकाल रजुल मिन अल कौम, अब आपने हुक्म दिया तो लोगों ने पीटा उनको, तो कौम में से एक आदमी ने कहा अल्लाहुम्म लअनहु मा अक्सर मा युता बिही, अल्लाह इस पर लानत फरमा, अल्लाह इस पर लानत डाल दे अपनी, कितनी बार आता है, यानी कितनी बार पकड़ा जाता है शराब पीने में और फिर सजा होती है, इस पर अल्लाह की लानत हो, बार बार पीता है। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तलअनू, आपने क्या कहा? इस पर लानत मत करो, उस पर लानत मत करो। फवल्लाही मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की कसम मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि ये अल्लाह से और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है, इसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, अगरचे गलती कर रहा है लेकिन इसके दिल का हाल क्या है? इसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की बहुत मोहब्बत है, कूट कूट के भर दी गई इसके दिल में। लेकिन बाज औकात आदमी बाज कमजोरियों की बुनियाद पर कुछ गलती करता है, तो वो गलती गलती है, मोहब्बत की वजह से सजा रोकी, सजा तो मिलेगी, गलती को गलती ही कहा जाएगा, ये नहीं कि बहुत अच्छा है इसलिए गलती भी सही, नहीं, गलती गलती है, लेकिन लानत मत कर उसके ऊपर, क्योंकि ये आदमी अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। तो एक आदमी की खूबियों पर निगाह होना चाहिए, बाद वक़्त वो गलती कर देता है लेकिन उसकी वजह से फौरन उस पर लानत करने लग जाना इस्लाम का तरीका ये नहीं है, बल्कि इससे बुरा तरीका ये है कि एक आदमी लानत तो लानत, उसके बारे में जहन्नम की फतवे देने लग जाए, कुफर के फतवे देने लगे, ये अच्छी बात नहीं है कि कोई आदमी मसलन नमाज को नहीं आता है, कोई आदमी मसलन शराब पीता है, कोई आदमी गुनाह करता है, कोई आदमी वो तो सुधरेगा नहीं, वो तो ऐसे ही मरेगा, जहन्नम ही दिखता हो तो वो तो जहन्नम में ही जाएगा। तो कोई आदमी यूं कहे कि हमारी जमात जन्नत में जाने वाली है और बाकी तुम लोग सब जहन्नम में जाने वाले, इसको क्या मालूम है तौबा करेगा कि नहीं करेगा, है ना, तुम लोग तो जहन्नम में ही जाने वाले। तो कोई आदमी किसी की जहन्नम का ही फैसला देने लगे उसकी गलतियों की वजह से, ये सही नहीं है। इसकी एक मिसाल हदीस में हमको मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कान रजुलान फी बनी इसराइल मुतवाकियैन, बनी इसराइल में दो भाई थे, दो दोस्त थे, फकान अहदुहुमा युज़निबु वल आखर मुज्तहिदुन फिल इबादा, इन दोनों में से एक गुनाहों में पड़ा रहता था और दूसरा था वो खूब इबादत करता था, इबादत में बहुत मुजाहिदा करता था। फकान ला यज़ाल मुज्तहिदु मुज्तहिदु यरा अल आखर अला ज़म्ब, तो जब भी वो मुज्तहिद इबादत में इज्तिहाद करने वाला, बहुत ही मुजाहिदा करने वाला, जब दूसरे से मिलता तो देखता किसी न किसी गुनाह में पड़ा हुआ है। फयकुल अक्सर, वो बोलता था गुनाह छोड़ दे। फवजदहु यौमन अला ज़म्बिन फकाल लहु अक्सर, एक दिन फिर मुलाकात हुई और वो गुनाह में था, इसने कहा गुनाह मत कर, छोड़ दे गुनाह को, क्या जिंदगी, तो ये रास्ता छोड़। फकाल खलिनी व रब्बी अबुइस्त अलैया रकीबन, उसने कहा अरे छोड़ मुझको, मेरे अल्लाह के मामले को छोड़ दे, मेरे मामले को अल्लाह पे छोड़ दे, हमारा मामला है अल्लाह का, मेरा मामला है छोड़, हमको मेरे ऊपर दारोगा है कि तू, मेरे ऊपर तुझको दारोगा बना के, मेरा रखवाला बना के भेजा अल्लाह ने तुझको, बोल दिया उसने। فقال والله لا يغفر الله لك, उसने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह तेरी कभी मगफरत नहीं करेगा। औला يدخلك الله الجنه, या यूं कहा कि अल्लाह तुझको कभी जन्नत में नहीं डालेगा, बोल दिया गुस्से में आके, ईमान का जज्बा लेकिन अल्फाज गलत। فقبض ارواحهما فاجتمعا عند رب العالمين, अल्लाह ने दोनों की रूह कब्ज की और दोनों के दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जमा हुए। فقال لهذا المجتهد اكنت بعالما او كنت على ما في يدي قادرا, عبادت گزار سے اللہ نے پوچھا کہ کیا تو میرے بارے میں جانتا تھا میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں اس کے بارے میں, جہنم کے میں ڈالنے والا تجھ کو معلوم تھا, یا میرے ہاتھ میں جو ہے فیصلے کی قدرت کیا تو اس پر قادر تھا کہ تو اپنی طرف سے جہنم کا فیصلہ کر دے جو میرے ہاتھ میں ہے. وقال المذنب اذهب فادخل الجنہ فادخل الجنہ برحمتی, گناہگار سے اللہ نے کہا جا جنت میں جا میری رحمت سے جنت میں جا. وقال للآخر اذهب به الى النار, اور دوسرے سے کہا فرشتوں سے کہا اس کو لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ, اس کو جہنم میں لے جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے, والذی نفسی بیدی لتکلم بکلمت او بقت دنیاہ وآخرتہ, اللہ کی قسم اس نے ایک جملہ زبان سے ایسا نکالا جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہوئی آخرت بھی برباد ہو گئی. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک گناہگار ہے دل اس کا اچھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کے دل اور اس کی زندگی کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار ہوتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, اللہ کا اختیار ہے, اللہ کسی کی جنت چھین کے تو اس کو نہیں دے رہا ہے نا. ایک آدمی ہے گناہگار ہے صبح سے شام تک جوانی سے لے کے موت تک, اگر اللہ اس کو جنت میں ڈال دے آپ کا کیا لیا, اللہ نے اپنی طرف سے دیا ہے, دنیا میں نہیں دے رہا اس کو, فرعون کو دنیا میں دیا نہیں اللہ نے. تو اللہ اگر کسی کو دے دے, مسلمان ہے وہ مشرک تو نہیں ہے, مشرک کو نہیں دے گا اللہ, وعدہ جنت کا نہیں اس کے لیے, لیکن ایک مسلمان ہے گناہگار ہے اللہ کی مرضی اللہ اس کو جنت میں ڈال دیا سب گناہ معاف کر دیا, کیوں اختیار نہیں, بادشاہ کو اختیار ہے مجرم کو معاف کر سکتا ہے وہ. آپ بولے گے نہیں نہیں اس کو بھی سزا دو, آپ کا کیا ہے یہاں پر, آپ کا حکم توڑا اس نے اللہ کا حکم توڑا, اللہ کی مرضی ٹھیک ہے توڑا میں معاف کر دیا اس کو. یہ بھی توحید ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. آدمی کو کیسا لگتا نہیں نہیں اس کو بھی سزا دینا چاہیے, تو آپ کا کیا جا رہا اس میں, اس کو جنت میں نہیں ڈالنا چاہیے, تو آپ کی جنت چھین کے اللہ اس کو دے رہا ہے, آپ کا تو آپ کو دے رہا نا برابر. آدمی عجیب مخلوق ہے کہ خود کو ملا تو بھی دوسرے کو نہیں ملنا کا ٹینشن اس کو رہتا ہے, آئے گا نہیں, آپ کا جا رہا کیا اس میں, آدمی کہہ سکتا اس کو نہیں ملنا چاہیے, اگر آپ کا لے کے اس کو دیا جائے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے, بھائی میرا اس کو کیوں, وہ لائق نہیں ہے. ارے آپ کا نہیں, اللہ اپنی طرف سے اس کو دینا چاہتا ہے, آپ کا کیا جا رہا اس میں. بخیل انسان کنجوس انسان جو ہے اللہ بھی دے تو اس کو دے اچھا نہیں لگتا, اس کو دے رہا کائی کو دے رہا اس کو, یہ مصیبت ہے انسان کی. تو اس آدمی نے یہی کیا, اللہ کے فیصلے میں خود دخل دینے لگا جو کہ توحید کے منافی ہے. توحید یہ کہ اللہ ہی کے لیے فیصلے کا اختیار ہے, الیس اللہ باحکم الحاکمین, لیکن اس نے اپنی طرف سے اللہ کا کام خود کیا, اللہ تیرے کو جنت میں کبھی نہیں ڈالے گا, اللہ نے کہا نہیں ایسا بولتا ہے, میرا کام تو کرتا ہے, تو جہنم میں جا, اس بولنے کی وجہ سے میرے بارے میں بے ادبی کرنے کی وجہ سے, میرا کام تو کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے. اور یہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا, باقی جس کے لیے چاہے گا مغفرت کا اعلان کر دے گا, جو گناہ چاہے جتنے گناہ چاہے بخش دے, سب معاف کر دیا تو کیا کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس طرح سے یعنی بعض اوقات آدمی دوسروں پر فتویٰ لگانے سے ان کو تو جہنم میں نہیں پہنچا پاتا ہے, خود جہنم میں پہنچ جاتا ہے. تو دین کی غیرت اپنی جگہ ہے لیکن اپنی حدود میں آدمی کو رہنا چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کوئی آدمی کا دیکھو ہمارے لیے دلیل مل گئی, ہم کتنے بھی پاپی ہوں ہم کو اللہ جنت میں ڈالے گا, ایسا ضروری نہیں ہے. دوسری حدیثیں بھی آپ یاد رکھیں کہ ایک عورت تھی اچھی خاصی تھی, ایک بلی کو باندھ کے رکھا, اس کو کھانے نہیں دیا نہ چھوڑا کہ خود کھائے ڈھونڈ کے اپنا کھانا, تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں اس کو ڈال دیا. تو اللہ چاہے تو پکڑ کر لے, اللہ چاہے تو معاف کر دے. تو ضروری نہیں کہ ایک آدمی گناہوں کی زندگی جیے اور اللہ اس کو معافی کرے, اللہ کی مرضی ہے. تو وہاں معاملہ کیسا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا معلوم نہیں, جنت میں ایڈمیشن ملتا کہ نہیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ جنت کس کے لیے ہے, नेक लोगों के लिए है। अब इसका नंबर अगर लग गया तो लग गया, अगर अल्लाह चाहे तो डाले, नहीं तो जहन्नम में भी भेज सकता है। इसको सीट मिली तो ठीक, नहीं मिली तो दूसरी जगह किधर है। तो ऐसा आदमी जो है यानी लकी ड्रॉ वाला मामला न करे जन्नत के बारे में, कि लगा तो लगा नंबर नहीं तो नहीं लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि आदमी को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने दीन दिया ही इसलिए कि आदमी उस पर चले ताकि जन्नत में जाए। ये कन्फर्म्ड है कि दीन पे चलोगे जन्नत मिलेगी। लेकिन आदमी दीन पर न चले और बोले लगा तो लगा नंबर ठीक है, जहन्नम का भी तो लग सकता है, उसके लिए भी तैयार हो जाओ, फिर जन्नत में या जहन्नम में कहीं भी डाल सकते हैं अल्लाह। तो ये यानी इस सिलसिले में बात याद रखे, किसी पर जहन्नम का फतवा ना दें। इसी तरह से किसी की गलती की इसलाह करने वाले के लिए यह भी उसूल है कि अगर वो गलती उसकी जाती है तो उसकी इसलाह करने वाला उस गलती की तशहीर न करे। आदमी देखता है किसी की गलती, उसकी इसलाह करता है, फिर पूरे गांव में बोलना शुरू करता है कि वो तो ऐसा गलती किया था, मैंने बताया उसको ऐसा ऐसा ऐसा, उसको बेइज्जत करने की कोशिश करता है, हालांकि वो गलती उसकी अकेले में थी। तो ये भी हक गलती करने वाले का, इसलाह करने वाले पर है कि अगर वो गलती उसकी जाती है और खुसूसन पोशीदा है तो उसको छुपा के ही रखे, उसको लोगों के सामने बयान न करे। इसकी फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सतर औरता अखीह المسلم सतर अल्लाह औरतह यौम القيامه, कि जो अपने भाई की गलती छुपाएगा, उसकी गलती पर पर्दा डालेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन इसकी गलतियों पर पर्दा डालेगा। क्यों, हमारी गलतियां नहीं है? अल्लाह जानता है कि नहीं जानता है? अल्लाह अगर उधेड़ दे पूरी मखलूक के सामने इंटरनेशनल लेवल पे, है कि नहीं, कयामत के दिन क्या होने वाला है? कि ना सिर्फ ये कि सारी दुनिया के लोग होंगे, सारे दौरों के लोग होंगे, इब्तिदा से लेकर आदम अलैहि सलाम से आखिरी इंसान तक सब लोग होंगे। अगर अल्लाह वहां हमारे मामलात खोल दे मखलूक के सामने, तो आप बताइए कितनी शर्मिंदगी होगी। वो ग्लोबल ग्लोबल शर्मिंदगी है, आलमी सतह पर वो शर्मिंदगी होगी। तो एक आदमी अगर अपनी सतह पर छोटे पैमाने पर किसी आदमी की गलती जानता है और उसकी इसलाह करे और उसको छुपा दे, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला इसकी गलतियों को मखलूक से छुपाएगा। इतना बड़ा यानी आदमी को चुनना है, ये चुनना है दोनों में से क्या चाहता है, वो उसकी बेइज्जती या अपनी बेइज्जती है। वमन कशफ औरत अखीह المسلم कशफ अल्लाह औरतहु हत्ता यफदहहु बिहा फी बैतिही, और जो आदमी अपने मुसलमान भाई की पर्दा दरी करता है, लोगों के सामने उसके अयूब को खोल के रखता है, उसके मामलात को उसकी तशहीर करता है, तो अल्लाह ताला इसकी भी पर्दादरी करेगा, इसको भी जलील करेगा, यहां तक कि वो अपने घर में होगा अल्लाह उसकी बेइज्जती करेगा। हत्ता यफ्तहहु बिहा फी बैतिही, तो ये यानी अल्लाह की तरफ से सजा है कि जो दूसरे को जलील करने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको जलील करके रख देगा। ये अल्लाह का कायदा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसको इब्न माजा ने रिवायत किया और ये सही रिवायत है। इसी तरह से गलती की इसलाह के लिए एक ये भी चीज है कि आदमी बजाय लानत के जिसने गलती की है उसके लिए हिदायत की और इसलाह की दुआ भी करे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि उतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन कद शरिबा, एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, काला द्रिबू, आपने कहा मारो इसको, पीटो इसको शराब की वजह से। काला अबू हुरैरा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला कहते हैं, फमिन नद्दारिबु बियदिही वद्दारिबु बिनअलिही वद्दारिबु बिसौबिही, हमें से किसी ने उसको हाथ से मारा, हाथ से पिटाई की, किसी ने जूतियों से पिटाई की, किसी ने कपड़े से पिटाई की। फलम अनसरफा قال بعض القوم اخزاك الله, किसी आदमी ने कहा अल्लाह ताला तुझको जलील करे, अल्लाह तुझको जलील करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, لا تقول هكذا, ایسا مت بولو, لا تقول هكذا, ایسا نہ کہو. لا تعین علیہ شیطان, اس کے مقابلے میں تم شیطان کی مدد مت کرو. کیوں؟ شیطان چاہتا ہے کہ برباد ہو, اور تم اس کو بد دعا دے کے اس کو برباد کر رہے ہو, تو تم کس کی مدد کر رہے ہو؟ تم شیطان کی مدد کر رہے ہو. اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تو گمراہ کر کے رکھوں گا, میں تو ان کو گمراہ کر کے رہوں گا, تو تم اس کو بد دعا کر کے تم کیا کر رہے ہو؟ تم شیطان کی مدد کر رہے ہو. تو لا تعین علیہ شیطان, یا تمہارے ایسا کرنے کی وجہ سے وہ گناہ پر اور زیادہ جم جائے گا, ضد میں آئے گا. تو اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں, آپ نے کہا ولکن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه, بلکہ تم یوں کہو اے اللہ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ اس پر رحم فرما. تو کسی کی غلطی اگر ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی اور اللہ سے رحم کی دعا کریں, اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں, اس کے لیے اصلاح کی دعا کریں, تقوی کی دعا کریں. یہ زیادہ اخلاقی طریقہ ہے, ورنہ اپنی بھڑاس نکالنا گناہگار پر یہ اچھی چیز نہیں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک آدمی ہے وہ گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, آپ نے اس کو بتایا تھا, پھر وہ غلطی کرتا ہے, تو اتنا غصہ آدمی کو آتا ہے, تو وہ جو غصہ ہوتا ہے آدمی خود سوچے, وہ غصہ اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے ہے یا میری بات نہیں ماننے کی وجہ سے ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اس لیے غصہ آ رہا ہے, یا میں نے بتایا نہیں مانتا میری بات اس لیے ہے؟ تو آدمی سوچے اس میں توحید کا کمال خود اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے, یا اپنے نہیں بتانے کے باوجود میری بات نہیں مان رہا اس لیے غصے میں ہے. تو یہ اس کو پہلے اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا, اس کے مینٹیننس کی ضرورت ہے کہ اس کا ابھی تک کے واقعی اخلاص دل میں پختہ ہوا نہیں ہے, یہ اپنے لیے غصے میں آ رہا ہے, اپنی ذات کے لیے غصے میں آ رہا ہے, یا اللہ کی شریعت کی پامالی کی وجہ سے غصے میں آ رہا ہے. پہلے اپنا جائزہ آدمی لے. اس لیے میں نے ابتدائی میں درس کے کہا تھا کہ یہ جو درس ہے اصلاح کرنے والوں کی اصلاح کے لیے, کہ اصلاح کرنے والے کیسے ہونے چاہیے. تو ایک آدمی اگر کسی کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے, اس کو چاہیے کہ پہلے وہ خود اپنی اصلاح کرے, وہ ان اصولوں کو آداب کو سیکھے جن کے ذریعے سے وہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو واقعی اللہ کے دین کے داعی, مبلغ اور لوگوں کی اصلاح کرنے والے بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.